international politics, and it is time we sanction Israel. तुर्की ने आज कहा है और उन्होंने जो है वो आज फॉरेन मिनिस्टर साहब जो पार्टी डेलीगेशन हैं उनसे मिल रहे थे जो आज और पैलेस्टाइन के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने ये स्पीच जो है वो की है. दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल. जी जबरदस्त किस्म के ये हॉल्स हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त इसके डेकोरेशन हैं, खाने हैं और फिर गोल्फ कोर्सेज भी हैं. तो वो कहते हैं जी हर चीज का आप यहां पे मजा ले सकते हैं. अगर आपको अपने कोई भी कॉरपोरेट या पर्सनल इवेंट्स करने हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9054588888 एंड ओपन माइक कफे. जबरदस्त किस्म के देसी खाने यहां पे होते हैं. 1310 डेनलेस स्ट्रीट ईस्ट के ऊपर इट इज लोकेटेड और आप इनको कॉल कर सकते हैं 416-526-6800. एंड जनाब यहां पायल ज्वेलर्स, ये भी बहुत जबरदस्त ज्वेलरी दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान से जो है वो लाए हुए हैं यहां पे. और आपके कोई भी इवेंट्स अगर हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9057907879. इसके अलावा स्पीयर एंड मैके, सर्दियां आने वाली हैं और बहुत जबरदस्त किस्म के कपड़े जो हैं इस वक्त स्पीयर एंड मैके पे आए हुए हैं. बहुत सारी जैकेट्स, बहुत सारे सूट्स बड़े लेटेस्ट डिजाइन के और मरीनो वुल के बहुत सारे स्वेटर्स हैं, शर्ट्स हैं. तो आप स्पीयर एंड मैके जो है उसको भी जरूर विजिट करें. वहां पे इस वक्त आपको बेतहाशा वैरायटी मिलेगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारा स्टॉक मंगवा लिया है और उसमें आपको जूते टाइयां जो है बहुत कुछ. और अगर आप अपना कस्टम मेड भी कोई चीज करना चाहते हैं सूटिंग या शर्टिंग, यानी आपका अगर नाप का आपको अगर कोई चीज नहीं मिल रही है वहां पे तो आपको वो कहते हैं जी आप आए, आपको इटालियन जो वुल है उसके सूट्स आपको बना के दिए जाएंगे. तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9056703388. अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज वेलकम किया इंडियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एस जयशंकर साहब को. उनके साथ हाथ भी मिलाया और उनको जो है जो आज डिनर दिया गया था एससीओ लीडर्स के लिए उसमें उनके साथ कोई हल्की सी बातचीत भी की. क्योंकि कल हमने आपको बड़ा क्लियर कर दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत क्लियरली कहा था कि एस जयशंकर साहब पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल टाइज की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं. एस जयशंकर साहब जो हैं पाकिस्तान में आए थे, आज ही सुबह वो पहुंचे थे और जो है वो इनके आपको पता ही है पाकिस्तान के पिछले 10 साल से कुछ ज्यादा रिलेशंस नहीं है इंडिया के साथ अच्छे. इस्लामाबाद जो है इस वक्त होस्ट कर रहा है 23rd मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और बड़े ही स्ट्रिंजेंट किस्म के वहां पे मेजर्स लिए गए हैं ताकि कोई भी हुनरबाजी जाहिर है कि ना हो, मुल्क का बैड इंप्रेशन बाहर ना जाए. पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ज्यादा चीजें जो है उस वक्त खराब हो गई थी, डिप्लोमेटिक टाइज उस वक्त ज्यादा खराब हुए थे जब 2019 में ये आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको रिवोक किया गया था इंडिया में. और ये जो आज से मीटिंग शुरू हुई एससीओ की उसको प्रिजाइड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब. फॉरेन ऑफिस ने इससे पहले कहा था कि जी चाइना, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर प्राइम मिनिस्टर्स. ईरान की तरफ से फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा एरफ जो हैं वो आएंगे. इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आए थे. इसके अलावा मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहां पे आए हैं. आज जब लोग इस्लामाबाद में पहुंचे तो उनको एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो कैपिटल देखने को मिला और कलरफुल लाइट्स वहां पे लगाई गई थी, फ्लोरल डेकोरेशंस और फ्लैग्स और बैनर्स लगाए गए थे एससीओ के डिग्नेटरीज को वेलकम करने के लिए. और जाहिर है कि एससीओ के स्टेट की जो स्टेट्स हैं डिफरेंट उनके फ्लैग्स भी लगाए गए थे. इन सबके लिए रेड कार्पेट रोल किया गया था और बच्चे जो थे बड़े खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर यहां पे थे जो कि फॉरेन डिग्नेटरीज को बुकेज दे रहे थे. तो काफी खूबसूरत दिख रहा था इस्लामाबाद जो है एससीओ मीटिंग के लिए. पाकिस्तान चाइना जो है उन्होंने कहा जी कि हम अपने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को अब और आगे लेकर जाएंगे और हमारे सेम शेयर्ड प्रिंसिपल्स हैं. ये डेलीगेशन लेवल की जो बातचीत है ये आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चाइनीज प्रीमियर ली कियांग जो हैं उनके बीच में हुई है. उन्होंने कहा जी इस पार्टनरशिप को और स्ट्रांग करने की जरूरत है. उन्होंने अपना जो एंटायर जो बायलेटरल टाइज का गैम्बिट है उसके ऊपर आज डिस्कशन की और कहा कि हमको सीपैक के ऊपर और तेजी से काम करने की जरूरत है. एक हाई लेवल डेवलपमेंट जो सेकेंड फेज में हो रही है उसके ऊपर भी सारी डिस्कशन की. उन्होंने कहा जी कि हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, आईटी, साइंस, टेक्नोलॉजी में और ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. शहबाज शरीफ साहब ने अश्योर किया इनको, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि हम बिल्कुल जो चाइनीज नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा सख्त इकदाम करेंगे. इसके अलावा इन्होंने प्रिजाइड किया, दोनों ने जो कंप्लीट हुआ है अभी न्यू गवादर एयरपोर्ट उसको और बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं. इसके बाद जो है लॉन्ग लिव पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप उसके नारे भी लगाएंगे.
are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, आज उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है वो अच्छी हेल्थ के अंदर हैं और उनकी जो फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सून अवेलेबल रहेंगी। उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर्स को अलाउ कर दिया गया है कि उनको मिलने को अडियाला जेल के अंदर, क्योंकि पीटीआई ने बहुत ज्यादा कंप्लेन की थी कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा जी गौर साहब ने कि अक्टूबर 3 को आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कोई लॉयर, कोई फैमिली मेंबर, कोई पार्टी का वर्कर उनके साथ मिल नहीं पाया है और उनकी, हालांकि हमने सुना है कि तबीयत भी ठीक नहीं है। पीटीआई ने फिर जो है एक लेटर भी डाला था इंटीरियर मिनिस्ट्री को और उन्होंने कहा था कि हमसे मीटिंग करें। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स और मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को एज अ रिजल्ट आज जेल में भेजा गया था, जिन्होंने कहा है कि ही इज ओके और आज उनको एक घंटा एक्सरसाइज करने की भी इजाजत दी गई है। बैरिस्टर गौहर ने शुक्रिया अदा किया तमाम वर्कर्स और पीटीआई सपोर्टर्स का जिन्होंने कि खान साहब की हेल्थ के लिए कंसर्न शो किया। इसके ऊपर बात करते हुए डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला कि जी अब तो आपका एंग्जायटी जो है यू शुड पुट इट टू रेस्ट, और ये उस वक्त हुआ जब हमने आपको कल खबर सुना रहे थे, जो हमने स्पेशल रिपोर्ट भी आपको दी थी कि बहुत सारे जो अमेरिकन पाकिस्तानी और बाकी जो डायस्पोरा बाहर रहता है वो, और यहां पे कनाडा में भी लोगों ने कहा था कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है। यहां तक कि इतनी सीरियस हो गया मामला कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अमेरिका में अपने जो कांग्रेस मैन है उनको कहा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब को आप एक लेटर भेजो, जो कि भेजा गया था। इसके अलावा जमायमा गोल्डस्मिथ जो हैं, जो कि इनकी एक्स वाइफ इमरान खान साहब की, उन्होंने भी एक्स के ऊपर कहा था कि अथॉरिटीज ने हर किसी को इमरान से मिलने से मना कर दिया है और मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है और आइसोलेशन में रखा है और उसको डार्क में रखा है, उसके पास कोई बिजली भी नहीं है वहां पर, उसको काट दिया है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, उसके नेफ्यू को डिटेन किया, उसकी बहनों उजमा और अलीमा को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बेटे जो हैं सुलेमान एंड कैसिम अपने बाप के साथ कोई रब्ता नहीं रख सकते हैं, तो ये उनका हक है एज ब्रिटिश नेशनल्स कि वो अपने बाप का हाल जान सकें फर्स्ट हैंड, तो बताया जाए कि उसकी कैसी हालत है। तो उसके ऊपर जो है फिर जो पीटीआई ने आपको पता ही है कहा था कि हम 15 को यानी कि आज जो है मोर्चा निकालेंगे डी चौक पे, फिर वो अथॉरिटीज ने उनको कहा कि भई हम आपकी मुलाकातें इमरान खान साहब से करवा देंगे, तो आप ये ना निकालें एससीओ को सामने रखते हुए, जो कि फिर पीटीआई ने इसको कैंसिल किया था और आज फिर बैरिस्टर गौर ने ये सारी डिटेल्स दी हैं। आईएसपीआर की एक प्रेस रिलीज आई है जी और उसके मुताबिक आर्मीज ऑफ पाकिस्तान एंड रशिया जो हैं वो अब एक बायलैटरल एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जॉइंट एक्सरसाइज द्रुज़बा 7 और ये जो है 7th बायलैटरल काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस हैं जो कि ये दोनों कंट्रीज कर रहे हैं और ये जो स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 13 से एट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी के अंदर, जहां पे के पार्टिसिपेट कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से लाइट कमांडो ट्रूप्स और रशिया की तरफ से उनका मिलिट्री कंटिंजेंट। चीफ ऑफ पाकिस्तान जो है जनरल आसिम, उन्होंने वो चीफ गेस्ट थे इसके इस ओपनिंग सेरेमनी के, और इसके अंदर जो दोनों जो मिलिट्री वाले हैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को एनहांस करेंगे और मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज जो हैं उनको भी बढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर 13 को पाकिस्तान यूएस नेवीज जो हैं उन्होंने भी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की थी अरेबियन सी के अंदर के जो मामलात रीजन के अंदर बढ़ रहे हैं उनके से कैसा निपटा जा सकता है। पाकिस्तान नेवी ने फिर कहा था कि यूएस नेवी शिप एसएसएस ओकेन उसने विजिट किया है कराची को और पाकिस्तान की तरफ से जो शिप बाबर है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बीबी जरदारी जो हैं उन्होंने आज ब्लेम किया है जी पॉलिटिकल लीडरशिप को कि उनके जो अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उसकी वजह से वो अपोज कर रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स को और फॉर्मेशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स। उन्होंने कहा जी कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो थी लास्ट मंथ बड़ा पास करना चाहती थी ये बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि उसके पास नंबर्स नहीं थे। तो बीबी जरदारी ने कहा कि वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो हैं वो इसीलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि यानी कि गवर्नमेंट इसलिए रेजिस्टेंस फेस कर रही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके इफ्स एंड बट्स हैं और उनके अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने भी उससे पहले सोचा था कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है किया जाए, तो अब वो कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू किया हुआ है। बीबी जरदारी ने एक्स के ऊपर आज कहा जी कि पहले तो जो लोग थे ये सारे वो इस चीज को सपोर्ट करते थे, तो अब उन्होंने जो है पार्टी पोजीशन ली हुई है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो तो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था सिंस 2007 पोल्स आफ्टर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन 2006, और उसके बाद उन्होंने जब अपनी ये बात करने के बाद जो है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और पीपीपी का जो मैनिफेस्टो था 2013 और 14 का उसके अंदर 2024 का उसके जो कॉपीज हैं वो भी जो है उन्होंने अटैच किए। JUIF ने तो कल कहा कि जी कोई भी ट्वीक नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विदाउट पीटीआई। JUIF के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तजा एक टीवी शो के अंदर वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई को इग्नोर नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंसस बेस्ड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि पीटीआई को शामिल ना किया जाए। इससे पहले जो है JUIF के चीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि जनाब ये इनको भी आप मौका दें, लेकिन फिर उनकी जब मुलाकातें पीएमएलएन के लीडर्स के साथ हुई तो चीजें जो हैं वो जरा उन्होंने कहा कि वो जरा करीब आ रही हैं, मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया। आज मौलाना साहब की मुलाकातें बीबी जरदारी के साथ थी एट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन कराची। उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत ज्यादा डिलेब्रेशन की हैं और उसके बाद हमने ये एग्री किया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाने की जरूरत है। इससे पहले जो है नवाज शरीफ साहब और बीबी जरदारी साहब भी आपस में फोन पर बातें कर चुके थे और उन्होंने भी अपने प्रपोज ड्राफ्ट दिए थे, तो अब उन्होंने कहा जी कि मौलाना को भी हम सेम पेज पे ला रहे हैं। मौलाना एक दिन कहते हैं कि जी पीटीआई के नाल बैठो उन्होंने मर्जी नाल चलो, एक दिन कहते हैं कि जी अब मेरी उनके साथ बात होगी, पता नहीं मौलाना तक समझ नहीं आती। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर होने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर इलेक्शंस। महाराष्ट्र का पता चला है कि वहां पे असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो अब नवंबर 20th को हो रहे हैं और पोलिंग जो झारखंड में है वो दो फेजेस में होगी, नवंबर 13th और 20th को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में ये सारी डिटेल्स दी हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में कब कब असेंबली इलेक्शंस होंगे। जो काउंटिंग है इसकी वो नवंबर 23rd को होगी। इसके ऊपर जो अब बीजेपी है वो अब उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हरियाणा में जो उनकी जीत हुई है उसको वो आगे लेके चलना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर वैसे तो चार मेन पार्टीज हैं और बीजेपी उनके साथ मुकाबला करेंगी, इसी तरह झारखंड के अंदर भी बीजेपी जो है उनका मेन जो रिलाय वो करेंगे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पे करेंगे क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है रूरल और ट्राइबल एरियाज में। लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने लूज कर दी थी 5 सीट्स रिजर्व फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स टू इंडिया ब्लॉक और लोकसभा के इलेक्शन में, तो अब मोदी जी जो है वो चाहते हैं कि अब हम कोई भी लूज ना करें, इसीलिए झारखंड को वो ट्वाइस मंथ अभी वो विजिट कर चुके हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनॉग्यूरेट किए हैं। इससे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था महायुक्ति कैंपेन महाराष्ट्र के अंदर भी, तो अब पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी कि हम कांग्रेस को आने ना दें। आज की जो बड़ी खबर ये भी हिंदुस्तान से रही कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं 52 इयर्स अब उनकी एज हो गई है, तो अब वो भी व्यान की जो सीट है उससे कंटेस्ट करेंगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 इयर्स। यहां पे बायपोल्स होने वाले हैं नवंबर 13th को और सबसे पहले ये यहां पे अपनी वालदा सोनिया गांधी और भाई के साथ 2004 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर आई थी। इनका फोकस जो है यूपी के अंदर रहेगा और कांग्रेस की जो पॉकेट्स हैं अमेठी और रायबरेली उसके ऊपर। आज एक कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी एक मीटिंग हुई है महाराष्ट्र में और उसमें राहुल गांधी ने कहा है स्टेट लीडरशिप को कि बिला वजह आप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना होए, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये लोग हार चुके हैं और उनको शिकायत गई थी कि जी आपका बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था आपके स्टेट लीडरशिप में, तो अब महाराष्ट्र में वो स्टेट लीडरशिप को कह रहे हैं कि आप यूनाइटेड होके ये जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस हैं उसके ऊपर काम करें। कांग्रेस जो थी उसने 30 में से 13 सीटें विन की थी और इंडिया अलायंस जो थी उसने महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में इसीलिए अच्छा फिर जो है किया था परफॉर्मेंस शो किया था। कांग्रेस जो है अब कंटेस्ट कर सकती है 110 टू 115 सीट्स पे आउट ऑफ द टोटल 288 और बाकी 90-95 सीट्स वो छोड़ देगी सेना यूबीटी के लिए और 80-85 सीट्स फॉर एनसीपी एसपी। झारखंड के अंदर भी जो कांग्रेस है वो जूनियर पार्टनर रहेगी सीट शेयरिंग में जो कि एक और उसमें की प्लेयर जो है कांग्रेस रहेगी। लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें 31 में से कांग्रेस ने 16 सीट्स जो हैं वो जीती थी, 31 उसने वैसे अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए थे, 16 सीटें जीती थी और अब जो है कांग्रेस जो है अब मुलाकातें कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं और ये सारी मुलाकातें आज जो इनके पार्टी प्रेसिडेंट है मल्लिक अर्जुन खड़गे उनके घर पे रही। टॉप लीडरशिप ने एज अ रिजल्ट तमाम स्टेट जो महाराष्ट्र के जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको कहा है कि बिल्कुल हमारा सीएम का फेस कौन सा होगा उसके लिए आप पब्लिक स्टेटमेंट्स मत दें, ये सेंट्रल लीडरशिप का काम है और ये सेंट्रल लीडरशिप ही को करने दें। एल पचीनो, आपको पता ही है कि कितने बड़े स्टार हैं जनाब, हैं जी, और बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, सेंट ऑफ अ वुमन, गॉड फादर, जनाब क्या बात है। तो अपनी आज मेमोर्स जो हैं सोनी बॉय उसको आजकल ये प्रमोट कर रहे हैं, तो बीबीसी ने इनका एक इंटरव्यू लिया और बीबीसी ने उनको कहा कि क्या आपको पता है आप इतने बड़े स्टार हैं, सदियों से आप काम, यानी सदियों से नहीं कई सालों से आप जो है वो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो आपका एक हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का स्टार जो है वो जो बॉलीवुड है उसके अंदर नहीं है। तो एल पचीनो को पता ही नहीं था इस बात का, कहते हैं ओ अच्छा मेरे नाम का कोई स्टार नहीं है वहां पे, उन्होंने कहा हाँ जी नहीं है, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं भी हैं। तो जब उसने इंटरव्यूअर ने पूछा तो आप चाहते हैं आपका स्टार वहां पे हो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूं मेरा वहां पे स्टार होना चाहिए, मासूम, पता ही नहीं है इनको। और जनाब आज आया है रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स है सिंगम अगेन, उसका दूसरा आज ट्रेलर आया है जिसको लोगों ने काफी पसंद किया है। ये ट्रेलर जो है पहला जो आया था वो 5 मिनट का था, बहुत सारी उसमें बातें थी तो लोगों ने कहा जी ये तो बिल्कुल ही ओवरकिल है। अब एक बेचारा बिल्कुल ही एमेच्योर वीडियो एडिटर है, उसने एक ट्रेलर जो है उसको री एडिट करके जो उसका शॉर्टर वर्जन है वो डाला है जो यूट्यूब के ऊपर है, 1 मिनट और 14 सेकेंड्स का है, इसके अंदर कोई डायलॉग्स नहीं है और इसमें नियरली करीना कपूर को ओमिट ही किया गया है और फोकस जो है ज्यादा अजय देवगन, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण के ऊपर और एक्शन सीक्वेंसेस पे है, तो ये लोगों को बड़ा पसंद आया, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम किया है। और जनाब रणवीर कपूर साहब ने दिखाया अपना नया स्टाइल और लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो नया स्टाइल है ये किसके लिए है, ये धूम 4 के लिए है या ये एनिमल पार्क जो है उसके लिए है। ये तस्वीरें जो है सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाली, लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ी जबरदस्त इसकी लुक है। आलिम ने भी कहा कि यस हॉटनेस अलर्ट, एंड रणवीर साहब जो है वो बड़े शार्प लग रहे हैं शॉर्ट स्लीक हेयर कट में, काला उन्होंने काला सा शर्ट पहना है और डार्क सनग्लासेस लगाए हुए हैं और हल्का सा उनका बियर्ड जो है वो भी नजर आ रहा है, तो लोग जो हैं दे आर गोइंग गागा ऑन दिस लुक। लेकिन जाहिर है कि वो पहले ही कह रहे हैं कि ये धूम 4 के लिए है या एनिमल पार्क के लिए लुक है, ये किसके लिए अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और जनाब पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट जो है इंग्लैंड के साथ शुरू हो गया और जो डेब्यूटेंट है कामरान गुलाम उसने अपने डेब्यू के ऊपर ही 100 रन्स बनाए, पाकिस्तान ने अर्ली विकेट्स जो थी वो लूज की थी अब्दुल्ला शफीक और स्किपर शान मसूद की, लेकिन आज वन डे के खत्म होने पे पाकिस्तान वॉज 259 for 5 और रिजवान और सलमान अली आगा जो है वो अभी क्रीज के ऊपर है। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद दे ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट जो कि कोई इतना अच्छा फैसला ना रहा, लेकिन कामरान ने बनाए 100 off 192 balls, ये जो है ही हैज बिकम 13th पाकिस्तान बैटर टू मेक 100 ऑन हिज डेब्यू आफ्टर जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, मोहम्मद वसीम, अली नकवी, अजहर महमूद, यूनुस खान, तौफीक उमर, फवाद आलम, उमर अकबर एंड आबिद अली, एंड ही हैज बिकम द सेकंड पाकिस्तानी टू स्कोर अ टन ऑन डेब्यू एट नंबर 4 पोजीशन। इससे पहले जो नंबर फोर पे आए थे इनसे पहले जो पहला जो पाकिस्तानी प्लेयर था वो मलिक था, जो है मलिक 1982 में जिसने 100 बनाए थे। सलमान जो है इस वक्त 5 के ऊपर और रिजवान 37 के ऊपर खेल रहे हैं, जब कल का जो डे 2 का जब मैच रिज्यूम किया जाएगा। पाकिस्तान वॉज 19 for 2 in 40 minutes जब गुलाम आए थे। इंग्लैंड के जो अब नए ये कैप्टन आए हैं बेन स्टोक्स, इन्होंने जबरदस्त किस्म की स्पिन करवाई दोनों साइड से जिसका कि इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इन्होंने पहले जैक लीच को लेकर आए जिसने कि अब्दुल्ला शफीक को निकाला और फिर नेक्स्ट ओवर में उसने शान मसूद को 3 के ऊपर आउट कर दिया। मैथ्यू पॉट्स ने फिर साइम को आउट किया, साइम अयूब को ऑन 77 और जाहिर है कि इंग्लैंड कह रहा है कि बेन स्टोक्स के आने से काफी उनको फायदा हुआ है। बाबर आजम ने आज मनाई अपनी 30th बर्थडे और जितने भी फेलो क्रिकेटर्स थे उन्होंने उनकी अपनी बड़ी विशेष भी दी और बड़ी इनको तारीफ भी की। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, इन सब ने इनको तारीफ की और कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं, दे शेयर दे लव विद द एक्स स्किपर ऑन सोशल मीडिया और भी बहुत से लोग। हजारों लोग जो हैं जी उन्होंने आज इटली के अंदर पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडेरिटी शुरू की और इटली का मैच इसराइल के साथ होने वाला था इन यूईएफए नेशंस लीग मैच और ये लोग जो थे ये यूडीन के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न इटली के अंदर जमा हुए थे और ये वेव कर रहे थे पैलेस्टीनियन फ्लैग जिसपे के लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन स्टॉप जीनोसाइड और इटली वर्सेज इसराइल मैच result is equal to humanity's defeat to protect Israel genocide in Gaza. Host Italy jo tha usne phir aaj defeat kiya Israel ko 4-1 se in match at Udine Blue Energy Stadium ke andar as Azzurri aapko pata hai blue ko kehte hain aur inhone apna lead rakha hai group A2 ke andar. बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि जब आपने रशिया को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से बाहर रखा हुआ है क्योंकि उसने अटैक किया है यूक्रेन के अंदर तो सेम जो है वो इसराइल के साथ क्यों नहीं किया जा रहा क्योंकि वो भी वॉर क्राइम्स गाजा के अंदर कर रहा है. स्वीडिश प्रोसिक्यूटर अथॉरिटी जो है वो जनाब आप एक रेप प्रोब बगैर किसी का नाम लिए हुए चला रही है लेकिन लोगों का कहना है कि वो एम्बेपे हो सकता है और ये जो इंसिडेंट था ये एक होटल के अंदर हुआ था अक्टूबर 10 को लेकिन जब एम्बेपे से पूछा गया उसकी टीम से तो उन्होंने कहा जी हमें कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं मिली है. फखर जमान जो है उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है पीसीबी की तरफ से क्योंकि उन्होंने जब बाबर को साइडलाइन किया गया सेकेंड मैच में तो उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा नेगेटिव जो है वो मैसेज भेजेगा इसको क्यों निकाला है और इसको ऐसे नहीं निकालना चाहिए था. जब उसने ये बात की तो उन्होंने कहा जी कि आपने जो पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वो आपने वायलेट किया है क्योंकि जब आप अग्रीमेंट साइन करते हैं पीसीबी के साथ तो फिर आप पीसीबी की पॉलिसीज पे पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं. एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज कियाना जोसेफ एंड हेलेन मैथ्यूज इन्होंने आज हेल्प किया वेस्ट इंडीज को टू थ्रैश इंग्लैंड बाय 6 विकेट्स और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज जो है सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है ऑफ विमेन्स T20 वर्ल्ड कप. जोसेफ ने स्मैच किए 52 फॉर हर फर्स्ट T20 और स्किपर मैथ्यूज ने बनाए 38 ऑफ 50 और इन्होंने बड़े आसानी से इंग्लैंड का जो टारगेट था वो पूरा किया 141 फॉर 7 विद 12 बॉल्स टू स्पेयर. साउथ अफ्रीका जो है वो भी अब जो है लास्ट फोर में पहुंच गया है ग्रुप बी से और इंग्लैंड जो है वो अब एलिमिनेट हो गया है.
तो ये थी हमारी गर्मा गर्म खट्टी मीठी खबरें विद साउंड इफेक्ट.
यस.
और आई होप के तमाम सामयिन का और नाजरीन का जो शुगर लेवल है और जो हीमोग्लोबिन लेवल
वो
है
बढ़ गए.
नहीं सेट हो गया. सेट हो जाता.
सेट हो
आपकी खबरें नहीं जैसे आप नहीं थी फ्राइडे.
हाँ,
नहीं थी ना.
हाँ, हाँ.
वो भाई कॉल्स आ गई मेरे पास.
हाँ.
जी आज न्यूज नहीं होगी. उनका बेचारे का ऐसा लगा सांस फूल रहा है. आज आपने खबरें सुन ली.
हाँ.
आपका सांस बहाल हो गया.
हाँ.
तमाम सामयिन का भी और नाजरीन का. ये है मेडिसन जो शाजी जी आपको देती है विद साउंड इफेक्ट. शाजी आपका हमारे साथ शामिल होने का जुड़ने का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि जिंदगी रही और आप जिंदा रहें
जी जी
तो फिर कल आपसे मुलाकात
होगी. ठीक है सर. ओके जी थैंक यू.
चलिए तमाम सामयिन का जो है वो बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का. और आप हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर. आप हमें डायल करके भी सुन सकते हैं 6478724900 हमारी वेबसाइट eawaz.com यहां पर भी जाके आप हमारा रेडियो टेलीविजन देख सकते हैं और तमाम ही एडवर्टाइजर स्पॉन्सर्स के नंबर भी हमारे वहां मिल जाएंगे. चले जनाब पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आरफा मुजफ्फर साहबा की तरफ से माजिद जमाल साहब की तरफ से हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से मैं आपका होस्ट आमिर अहमद की तरफ से भी आप इजाजत लेते हैं. इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी. उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम.
मैं उन बेकरम की करम मांगता हूँ WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
जी Let's go. तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में और चटकने लगती है कितनी गलियां गलियों में मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ जैसे मैं कोई भूला राही मंजिल को ढूंढता हूँ मैं तेरे प्यार में पागल
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 पूजती हूँ
पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल
जैसे मैं कोई प्यासी बदली
बरखा को ढूंढता हूँ
सुबह उठ के कर दी तू कसरत वेक तेरी लुक मेरी बद जावे हसरत नित सुबह उठ के कर दी तू कसरत वेक तेरी लुक मेरी बद जावे हसरत जिंच तू मुंह रखा बेबी तू समझा तेरे सच्ची गा केंदा मेरा दिल कर जाना है हौली हौली तुरिया करो बेबी मेरा सा चढ़ जाना है हौली हौली तुरिया करो
Ah